नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेके हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ कुलविंदर सिंह कंग जी। कुलविंदर जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में।
शशांक, आपको नमस्कार और सभी सुनने वालों को नमस्कार
जी। तो बिहार से एक और अच्छी खबर हमारे लिए आई। भारत ने आज 13-0 के बड़े अंतर से थाईलैंड को हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की।
ये तो देखिए, लग ही रहा था कि आप अपने गोल औसत को ऊपर करेंगे। थाईलैंड कमजोर टीम है और कहीं ठहरती नहीं भारत के सामने, लेकिन बहुत अच्छा किया। और भारत की जो दीपिका है वो टॉप स्कोरर भी बनी है, 7 गोल अब उसके हो गए, तो भारत खिताब की तरफ कदम बढ़ा रहा है।
चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर और भी खेल खबरों पर आपसे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बिहार के राजगीर में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने थाईलैंड को 13-0 के बड़े अंतर से हराया। सेंचुरियन में कल तीसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 11 रन से हराकर श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। जालंधर में दिव्यांग इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलों में डोपिंग के खिलाफ नो योर मेडिसिन ऐप को अपनाने का आग्रह किया। तो शुरुआत हॉकी से ही करते हैं। बिहार के राजगीर में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप में वर्तमान चैंपियन भारत ने थाईलैंड को 13-0 के बड़े अंतर से हरा दिया है। प्लेयर ऑफ द मैच दीपिका ने 5 गोल किए। प्रीति दुबे, लाल रेमसियामी और मनीषा चौहान ने 2-2, ब्यूटी डुंगडुंग और नवनीत कौर ने 1-1 गोल किया। क्या कुछ रहा इस मैच में, सुनते हैं इस रिपोर्ट में, इसके बाद चर्चा करते हैं।
भारतीय टीम ने शुरू से ही विरोधी टीम पर दबाव बनाए रखा। प्लेयर ऑफ द मैच दीपिका ने तीसरे मिनट में ही गोल कर भारत को तेज शुरुआत दिलाई। इसके बाद प्रीति ने 9वें और लालरेम सियामी ने 12वें मिनट में गोल कर भारत को पहले क्वार्टर में 3-0 की बढ़त दिला दी। 30वें मिनट में ब्यूटी डुंगडुंग ने गोल कर स्कोर 4-0 कर दिया। इसके बाद 43वें मिनट में दीपिका ने 2 मिनट के अंतराल पर लगातार 3 गोल कर भारतीय टीम को निर्णायक बढ़त दिला दी। नवनीत, मनीषा और लालरेम सियामी ने भी 1-1 गोल कर भारत को 13-0 से शानदार जीत दिलाई। मजबूत भारतीय डिफेंस ने विरोधी टीम को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। इससे पहले भारत ने मलेशिया को 4-0 से और करीबी मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया था। भारत चौथे मैच में शनिवार को ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ खेलेगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
जहां से वहीं से शुरू करते हैं। चीन के साथ एक बेहद अहम मैच के पहले भारतीय टीम का मोराल काफी हाई दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल, मोराल काफी डाउन था जब 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम क्वालिफाई नहीं कर पाए
जी।
तो ये बात खिलाड़ियों के दिमाग में भी थी, कोच हरिंदर सिंह के दिमाग में, जो कि अभी भी कोच बने 4-6 महीने से
जी।
तो मैं समझता हूँ कि भारत को पता था गोल औसत में चीन टॉप पर है, तो उसके बराबर पहुंचने के लिए यहाँ जितने ज्यादा गोल कर सके वो करें। आज सबसे बड़ा अपसेट मलेशिया ने किया, कोरिया को 1-2 गोल से हरा दिया। उम्मीद नहीं थी किसी को कि मलेशिया जैसी टीम 3 बार के चैंपियन कोरिया को हराएगी। तो भारत को अब आगे जापान और चीन से खेलना है। पहले चीन से खेलना है, चीन सिल्वर पदक विजेता है पेरिस ओलंपिक का, और पिछली बार तो चीन कांस्य पदक रहा था। इस बार मुझे लग रहा है कि ये जो फाइनल मुकाबला होगा इस टूर्नामेंट का, वो भारत और चीन के बीच में होगा। और अगर भारत यहाँ जो अगर इस टूर्नामेंट को जीतता है तो बहुत अच्छा रहेगा भारत के लिए, और अगस्त 2026 में जो बेल्जियम और हॉलैंड में वर्ल्ड कप होना है उसके लिए मोराल बूस्ट होगा। भारत को एशिया कप जीतना होगा, वो अगस्त 2025 में होना है विश्व कप के लिए। अगर उसको जीत जाता है तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा, अगर नहीं तो फिर जनवरी 2026 में क्वालिफिकेशन राउंड खेलने पड़ेंगे। तो भारत के सामने एक रोड मैप है हरिंदर सिंह के सामने, युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की ये टीम है। तो मैं समझता हूँ कि भारत यहाँ पर फाइनल में तो जरूर खेलेगा, चीन से कड़ी टक्कर मिलेगी। जापान अभी तक बेचारा दुर्भाग्यशाली रहा कि वो ड्रॉ उसको ज्यादा खेलने को मिले और उसको अंक कम मिले हैं, तो उसके लिए भी काफी मुश्किल, लेकिन भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया और आगे फाइनल तक पहुंचेगा ये।
तो बिहार के राजगीर में ऐसे एशियाई गेम्स का होना, एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का होना, और वहां के खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए कहीं ना कहीं तो एक बहुत बड़ी सौगात रही है ये।
शशांक, मेरा ये मानना है कि अब ये हॉकी टूर्नामेंट छोटे शहरों में होने चाहिए, बड़े महानगरों में नहीं होने चाहिए। बिहार का राजगीर छोटा नहीं है, लेकिन दर्शकों की तादाद देखिए, हौसला देखिए, अगर भारत का मैच नहीं है तो भी सुबह से आके बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट ऐसी जगहों पर होने चाहिए जहां दर्शक जाके मैदान पे देख सकें। जैसे जालंधर हुआ, जयपुर हुआ, और कई शहर ऐसे हैं जहां पर हॉकी प्रेमी हैं, लेकिन ऐसा टूर्नामेंट होता नहीं, बड़े शहरों में दर्शक आते नहीं। तो बहुत बढ़िया इंतजाम किए हैं बिहार सरकार ने, और सबसे बड़ी बात है दर्शक जो हौसला बढ़ा रहे हैं भारतीय हॉकी टीम का, उसकी वजह से भारत लगातार ये 3 मुकाबले जीत चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट छोटे शहरों में भी होने चाहिए।
चलिए हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। और हॉकी की एक और खबर है हमारे पास है, चेन्नई में पुरुष सीनियर्स हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में कल हरियाणा का सामना उत्तर प्रदेश से और मणिपुर का मुकाबला उड़ीसा से होगा। बुधवार को जो मैचेस हुए थे उसमें अगर हम नजर डालें तो मणिपुर ने पंजाब को शूटआउट में 4-3 से हराया था, हरियाणा ने महाराष्ट्र को 5-1 से, उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को 3-1 से और उड़ीसा ने कर्नाटक को शूटआउट में 3-1 से हराया था। तो कल जो सेमीफाइनल मुकाबले होने वाले हैं उनमें आपका टेक क्या है?
मुझे लगता है कि मणिपुर की टीम अच्छा खेल रही है, वो अच्छा ले जाएगी। और दूसरी टीम जो आपने बताई कौन सी थी रिपोर्ट में?
मणिपुर के अलावा अगर हम देखें तो उड़ीसा से उसका सामना होने वाला है और हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश में।
हरियाणा मैं समझता हूँ मजबूत पड़ेगी इस मामले में, हरियाणा की टीम अच्छी है तो देखें। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो दो टीमें खेलेंगी एक जीतेगा, लेकिन जो नए खिलाड़ी उभर कर आएंगे वो भारतीय हॉकी टीम की बपौती बनेंगे, आगे वाले टूर्नामेंट्स के लिए भारत को नए स्टार मिलेंगे। और अब तो भारतीय हॉकी टीम जो मेन टीम है उसके साथ एक दूसरी तीसरी टीम भी बन सकती है, और अब पहचानने लगे लोग भारतीय हॉकी टीम के स्टार को, चाहे वो हरमनप्रीत सिंह हो या श्रीजेश। तो मैं समझता हूँ कि हॉकी को बहुत बढ़ावा भारत में मिल रहा है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि हॉकी बहुत से देश खेलते हैं, क्रिकेट थोड़े देश खेलते हैं।
बिल्कुल, क्रिकेट का आपने जिक्र किया है, युवा खिलाड़ियों का जिक्र किया है, तो भारतीय युवा टीम इस समय जो है वो कमाल कर रही है। दक्षिण अफ्रीका में सेंचुरियन में कल तीसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 11 रन से हराकर श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। और क्या कुछ रहा है इस मैच में, सुनते हैं इस रिपोर्ट में।
सुपर स्पोर्ट्स पार्क में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 219 रन का बड़ा स्कोर बनाया। साउथ अफ्रीका की सरजमी पर भारत का ये सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। जवाब में मार्को येंसन के 54 रन और हेनरिक क्लासेन के 41 रन के बावजूद मेजबान टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 208 रन ही बना सकी। अर्शदीप सिंह ने 3 और वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट हासिल किए। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, टीम ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन का विकेट गंवाया। इसके बाद अभिषेक और तिलक के बीच 107 रन की साझेदारी हुई। अभिषेक 25 गेंद में 50 रन बनाकर आउट हुए। प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा की 107 रन की धमाकेदार पारी की बदौलत भारत ने 219 रन का मैच जिताऊ स्कोर बनाया था। पहले मैच में भारत ने 61 रनों से जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने शानदार वापसी करते हुए 3 विकेट से मैच अपने नाम किया था। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन।
तो एक समय तो बेहद करीबी हो गया था मुकाबला, आखिर में हार्दिक पांड्या के ओवर में 26 रन और उसके पहले भी ठुकाई काफी कर दी थी, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट हमारे फेवर में रहा और कहीं ना कहीं युवा टीम के लिए बड़ा बूस्टअप यहां पर है।
मैं समझता हूं कि देखिए तिलक वर्मा 22 साल के खिलाड़ी हैं और बाएं हाथ के बैटर हैं, ये भविष्य के स्टार होंगे भारत के। बहुत बेखौफ होकर उन्होंने खेला और सारे ऑन साइड में 191 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, लेकिन उसका साथ दूसरा अभिषेक ने दिया, उन्होंने अर्धशतक बनाया, बाकी कोई ज्यादा योगदान नहीं कर सके। अगर आप देखें दक्षिण अफ्रीका की पारी में तो केवल जो 2 खिलाड़ी लास्ट में नॉट आउट रहे वो दोहरे अंकों तक नहीं पहुंचे, बाकी सबने दोहरे अंकों में रन बनाए। तो मैं समझता हूं कि सारी टीम का पूरा योगदान होना चाहिए। भारतीय टीम में कभी कोई एक खिलाड़ी चलता है, कभी कोई दूसरा चलता है।
यही मैं आपसे जिक्र करना चाह रहा था कि अगर हम अब तक देखें तो तिलक वर्मा का शतक हो या संजू सैमसन का शतक हो, इसके अलावा बाकी खिलाड़ियों का रंगों का योगदान नहीं निकल कर आ रहा है। हम रिंकू की भी बात कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव भी हैं, लेकिन अदर खिलाड़ी चमक नहीं पा रहे,
टॉप ऑर्डर नहीं कर पा रहे इस टूर्नामेंट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जैसे अभिषेक ने आज 50 रन बनाए लेकिन वो कैसे आउट हुए। क्रिकेट का ये नियम है कि आप चलकर गेंद तक स्ट्रेच करके मत जाइए, गेंद को अपने पास आने दीजिए, वो स्ट्रेच करके आगे गए, स्टंप आउट हुए। तो मैं समझता हूँ कि सभी को योगदान देना होगा। अर्शदीप ने 3 विकेट लेकर योगदान दिया और इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती का अच्छा योगदान था अभी इस टूर्नामेंट में। तो भारत अब ये सीरीज हार तो सकता नहीं, 2-1 से आगे है और अंतिम मुकाबले में जो बचे हुए खिलाड़ी को भी मौका दिया जा सकता है, जैसे जितेश शर्मा है या इसके अलावा यश दयाल को मौका दिया जा सकता है और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल आप ये देखिए कि 427 रन बने जिसमें 276 रन चौके और छक्कों की मदद से बने, यानी कि 15 चौके और 15 छक्के पड़े। तो मैं समझता हूँ देखने लायक मैच था, सांसें रुकी हुई थी, नींद उड़ जाती अगर भारत हार जाता। तो
चलिए कब चौथा मैच और आखिरी मैच कल जोहानसबर्ग के वांडर स्टेडियम में खेला जाएगा, देखेंगे क्या रिजल्ट रहता है। और क्रिकेट की ही बात को जारी रखते हैं तो जलंधर में दिव्यांग इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत आज से हुई है। इस लीग में देश भर के कुल 120 दिव्यांग क्रिकेटर खेल रहे हैं। तो देखा जाए तो दो श्रेणियां हैं यहां, सुनने में बाधित और दृष्टि बाधित, लेकिन दिव्यांग क्रिकेट में भी इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत होना कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कदम कहा
बहुत बड़ी बात। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो दिव्यांग टीम है, जो नेत्रहीन टीम है, जो वो बहुत अच्छा खेल रही है, कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक बार तो मेरे साथ फ्लाइट में भी आए थे दिल्ली से चंडीगढ़ एक टूर्नामेंट के लिए, तो जब फ्लाइट में उनका स्वागत किया गया पायलट के द्वारा बड़े खुश हुए। तो हमें हौसला देना चाहिए और ये जो लीग शुरू हुई है और भी खिलाड़ी इसमें आगे बढ़कर आएंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार की तरफ से बहुत योगदान हो रहा है। ऐसा कौन सा खेल है जिसमें सरकार योगदान नहीं दे रही? आप में प्रतिभा होनी चाहिए, आप उस प्रतिभा का लाभ उठाएं। पहले सुविधाएं नहीं मिलती थी, प्रतिभा थी, अब प्रतिभा भी है और सुविधाएं भी है, तो अब खिलाड़ी को ही दिखाना होगा, कोच तो मैदान पर जाकर खेल नहीं सकते।
जी, टूर्नामेंट में 8 टीमें खेल रही हैं, श्रीलंका और नेपाल के भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं। बैडमिंटन का रुख करें तो दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज सुबह कुमामोटो मास्टर जापान बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई हैं। ये रिपोर्ट सुनते हैं और फिर चर्चा करते हैं।
दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहा। उन्हें दूसरे दौर के मुकाबले में कनाडा की मिशेल ली के हाथों हार झेलनी पड़ी। विश्व रैंकिंग में 20वें स्थान पर मौजूद सिंधु पहला गेम जीतने के बाद मैच में अपनी लय कायम नहीं रख पाई और विरोधी खिलाड़ी ने कमबैक करते हुए लगातार अगले 2 गेम जीते। करीब 1.25 घंटे चले मुकाबले में सिंधु ने पहला गेम 21-17 से अपने नाम किया। दूसरे गेम में मिशेल ने वापसी करते हुए 21-16 से गेम जीतकर बराबरी की। इसके बाद मैच काफी रोमांचक हो गया। सिंधु ने तीसरे गेम की शुरुआत में 4-1 की बढ़त बनाई और इसे 11-9 तक जारी रखा। हालांकि ली ने इसके बाद वापसी की और 21-17 से जीत हासिल की। ये केवल तीसरी बार है जब ली ने सिंधु को 13 मुकाबले में हराया है। इस हार के साथ ही 2022 में सिंगापुर ओपन के बाद अपना पहला खिताब जीतने और 24 महीने के सूखे को खत्म करने की सिंधु की उम्मीदें भी खत्म हो गयी। उनकी हार से प्रतियोगिता में भारतीय अभियान भी समाप्त हो गया है। इससे पहले लक्ष्य सेन को राउंड ऑफ 32 में तथा ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स टीम को पहले ही दौर में हार कर बाहर होना पड़ा था। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
कुलविंदर जी, एक छोटा सा टेक आपका, 24 महीने का सूखा और क्या गलत हो रहा है पीवी सिंधु के साथ?
देखिए, सुबह 8:30 बजे ये बुरी खबर सुनने को मिली। एक घंटा मैच मैंने भी देखा और साल का आखिरी ये खिताब था, वो जीती तो उनके लिए अच्छा रहता, लेकिन पहले गेम में वो बहुत शांत दिख रही थी, बढ़िया तरीके से खेल रही थी, लेकिन दूसरे तीसरे में थोड़ा सा वो पिछड़ी। और सिंधु पहले और तीसरे गेम में हाफ वे तक आगे थी और तीसरा हारी लास्ट में। लगातार उन्होंने 4 पॉइंट जो दिए वो उनके ऊपर दबाव रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि ली उनको ज्यादा नेट पे खिला रही थी, अगला बिल्कुल बैकलाइन पे ले जाती थी और उन्होंने मिशेल ने चार बॉडी स्मैश लगाए जबकि ये एक ही लगा पाई। तो बॉडी स्मैश में नंबर मिलते हैं तो वो उसमें उन्होंने पूरी रणनीति के साथ उनको यहाँ हराया। दूसरे तीसरे में थोड़ा परेशान लगी, दोनों को एक एक येलो कार्ड भी मिले, लेकिन वो थोड़ी भारी पड़ी और खिताब जीत गई, यानी कि मैच को जीत गई।
चलिए, ATP टेनिस फाइनल्स का रुख कर ले तो वहां रोपन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन कल तीसरे और आखिरी ग्रुप मैच में केविन क्वाजिक्स और टीम पुट से खेलेंगे। बुधवार को 6वीं वरीयता प्राप्त भारतीय और जोड़ी की इस जोड़ी को जो है वो शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से हार का सामना करना था। पहला मैच इन्होंने जीता है तो वापसी की चांसेस आपको दिख रहे हैं इस जोड़ी?
देखिए, जो अनुभव है इनके पास, इन दोनों के पास, चाहे बोपन्ना हो चाहे उनके साथी खिलाड़ियों, अनुभव है, वापसी की उम्मीद करनी चाहिए। बैडमिंटन भी क्रिकेट की तरह हो गया, कभी कुछ भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि बोपन्ना और ये साल के आखिर में अपने अगले मुकाबले में वापसी की पूरी कोशिश करेंगे।
चलिए, और इधर एक और खबर है हमारे पास। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलों में डोपिंग के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अपील शुरू की है। इस पे खिलाड़ियों, कोचों और पूरे खेल समुदाय से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा इंडिया के नो योर मेडिसिन KYM ऐप को अपनाने का आग्रह किया गया है। तो इसका उद्देश्य है कि खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण जानकारी देकर अनजाने में डोपिंग से बचने और निष्पक्ष खेल को बनाए रखने में मदद मिल सके। समय हमारे पास नहीं है कुलविंदर जी, आप स्टूडियो में आए और तमाम खबरों पे आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।
और चलते चलते आपको मुख्य समाचार एक बार फिर से बता देते हैं। बिहार के राजगीर में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने थाईलैंड को 13-0 के बड़े अंतर से हराया। सेंचुरियन में कल तीसरे T20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 11 रन से हराकर श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। जालंधर में दिव्यांग इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई और खेल मंत्री मनसुख मांडविया में खेलों ने के खिलाफ नो योर मेडिसिन KYM ऐप को अपनाने का आग्रह किया। तो इसके साथ शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।